संबंध, सत्तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका के समाधान के लिए आगे के दो श्लोक कहते हैं। नत्वेवाहं जातुनाशं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। व्याख्या, मात्र संसार में दो ही वस्तु है, शरीरी अर्थात सत और शरीर माने असत, दोनों ही अशोच्य हैं। अर्थात शोक न शरीरी को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है, कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनों के लिए पुरुष लोक में जो अशोचान पद आया है उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। नत्वेवाहं जातुनाशं न तुम नेमे जनाधिपाः, लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से माने कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से माने अर्जुन रूप से सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप में माने राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे, परंतु मैं तू और ये राजा लोग इस रूप में प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहां मैं तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं तू और राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है ऐसा कहा गया। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं ऐसा कहने से पहले हम जरूर थे, ये बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत भविष्य और वर्तमान काल में भी तथा किसी भी देश परिस्थिति अवस्था घटना वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव हो ही नहीं सकता। यह अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं पर उनको मैं जानता हूं तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वर पना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहां भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहां चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में तो भगवान का आशय अपनी महत्ता विशेषता प्रकट करने में है, और यहां भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जनाने में है। न चैव न भविष्याम सर्वे वयम मतः परम, भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे ये बात नहीं है, अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। मैं तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे ये बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे ये बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं है ये बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक को नींद आने से पहले भी वह अनुभव रहता है कि अभी हम है, नींद खुलने पर भी वह अनुभव करता है कि अभी हम है, और नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं तू और राजा लोग, हम सब के शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता है, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। विशेष बात, मैं तू और राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे ये बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे, अर्थात ये सब शरीर तो नाशवान और हम सब अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वो मध्य में भी रहता है, और जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें दिखता ही है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिन मन बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन बुद्धि इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है, वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म कर लेता है तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन बुद्धि इंद्रियां और दृश्य ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा? तात्पर्य है, देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही तो है ना। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की भी कोई संज्ञा नहीं होती, प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रहता है। उस नित्य तत्व को हम उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं, परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधे और प्रकाश्य के संबंध से है। आधे और प्रकाश्य के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यो की त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इस दृष्टि से मैं तू और राजा लोग स्वरूप से अशोच्य हैं। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू तथा राजा लोग, ये तीनों शरीर को लेकर ही अलग अलग है, पर सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में भी है ही। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। इस सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। मैं, तू तथा ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात है और हूं दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं के संबंध से हूं है, अगर मैं का संबंध न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। वह है अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्यत काल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ? ये तीनों काल के अंतर्गत है, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप की सत्ता अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान ये विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाए तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह का वही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता।